समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, आयकर रिटर्न भरना अधिकांश रूप से एक जटिल और उलझाऊ प्रक्रिया माना जाता रहा है, पर अब जब आप इस वर्ष आयकर रिटर्न भरने बैठेंगे तो आपके सामने एक नया और अधिक सरल आयकर फॉर्म होगा। ऐसा फॉर्म जो न केवल आसानी से समझ में आएगा बल्कि पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित भी होगा। जी हाँ, इस वर्ष 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है, जिसने 64 वर्ष से लागू इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले ली है। लेकिन नए ढांचे के लागू होने के बाद ये सवाल स्वाभाविक है कि आम करदाताओं के लिए क्या बदलेगा, प्रक्रिया कितनी आसान होगी और इसका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा। आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम पब्लिक स्पीक में। हमारा विषय है नया आयकर अधिनियम 2025, और इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संयुक्त सचिव पीताम्बर दास जी और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली जी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, और सभी श्रोताओं को हमारा अभिनंदन।
जी हाँ श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की फोन लाइन खुली है। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर सकते हैं। और याद रखें, दिल्ली का कोड 011 लगाना न भूले फोन नंबर डायल करने से पहले। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044, इस पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो श्रोताओं, आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। पीताम्बर जी, सबसे पहले आपसे सवाल यही पूछना चाहूंगी कि हमारे जो आम श्रोता गण हैं उनको ये बताएं कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या है और ये पुराने टैक्स एक्ट से कैसे अलग है।
थैंक यू प्रियंका जी। इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये 1/4/2026 से लागू हो चुका है, एंड ये जो हमारे पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ऑलरेडी रिप्लेस किया हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज। पहले हमारे जो पुरानी एक्ट जो 61 की इनकम टैक्स एक्ट था वो जटिल था, उसको समझने के लिए मुश्किल था, पढ़ने के लिए मुश्किल था, तो उसको बेसिकली हम लोग ये कोशिश किया गया कि उसको कैसे हम लोग कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दे सो दैट जो कॉमन टैक्स पेयर उसको पढ़ के ही वो समझ जाए और कोई भी प्रोविजन उसको ढूंढने के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं पड़े। तो ये हमारा पहला कार्य था, तो जो हम लोग अच्छे से किए हैं। एंड ये इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 के एक्ट था, आपको बता दिया जाता है कि ये पहले 819 सेक्शन का था। अब ये सिंप्लीफिकेशन में हम लोग 536 धारा कर दिए हैं, ऑलमोस्ट 40% कम हो गया है। सिमिलरली हमारे भाग था 47, अभी वो जो चैप्टर्स ऑल्सो वो रिड्यूस टू 23, ऑलमोस्ट 50% हैज रिड्यूस्ड। एंड ये जो टेक्स्ट की साइज था वो भी 50% के ऊपर में कम हुआ है।
तो लोगों को सहूलियत हो, इसके लिए बहुत सारी चीजों में बदलाव किया गया है और कम किया गया है और आसान बनाया गया है। हमारे सबसे पहले श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, बलराम जी।
नमस्कार मैम।
नमस्कार
मैम। सबसे पहले तो मैम सर को नमस्कार और आप सबको भी सर नमस्कार। ये आप लोग इतना अच्छा विषय सुना। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो दृष्टि दिव्यांग साथी है, मतलब उनके लिए इनकम टैक्स में जो नया न्यू इनकम टैक्स है उसके लिए क्या कोई छूट का प्रावधान है क्या दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए?
हाँ, आप नया इनकम टैक्स की जो 25 की जो हमारा एक्ट है उसमें हमारा कोई भी चेंज जो पुरानी जो 61 के एक्ट से पॉलिसी वाइज कोई चेंज नहीं हुआ है, हमने बेसिकली उसको सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो भी है इनकम टैक्स एक्ट की स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो उसमें ध्यान दिया है। तो ये आपकी जो सवाल है वो हमारा उसको थोड़ा सा मैं और आगे जाके आपको समझा देता हूँ कि जो इनकम टैक्स एक्ट में एक नया टैक्स रिजिम आ गया है, नया टैक्स रिजिम में हमारा टैक्स रेट बहुत हम कम कर दिए हैं। आप जानते होंगे कि स्लैब्स बहुत सारे स्लैब हो गया, 7 स्लैब है, देन आपकी टैक्स रेट स्लैब वाइज बहुत कम हो गया है। 12 लाख तक की इनकम के लिए आजकल टैक्सेस नील है, तो उसके लिए हम लोग कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन अलाउ नहीं होगा। दैट मीन्स आपकी जो सवाल है कि आपको एग्जम्पशन मिलेगा नया टैक्स रिजिम में, वो नहीं मिलेगा। लेकिन आप सपोज वो पुरानी टैक्स रेजिम में अभी भी जिसमें टैक्स रेट थोड़ा हाई है उसमें आप फिर भी वो आप क्लेम कर सकते हैं वो डिडक्शन। सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इफ़ यू विश टू कंटिन्यू क्लेमिंग द डिडक्शन इन द ओल्ड टैक्स रेजिम। बट न्यू टैक्स रेजिम जो हमारे
उसमें आया है उसमें अभी कोई एग्जम्पशन नहीं है। बिहार के दरभंगा से जुड़े हैं मोहन पासवान जी। नमस्कार मोहन जी।
जी अच्छे प्रणाम मैडम
जी। मोहन जी आपसे अनुरोध है कि अपने जो रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दीजिए ताकि हम आपका सवाल सही से सुन पाए।
जी बिल्कुल बिल्कुल कर चुका हूँ मैडम। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुराने आयकर की अपेक्षा नए आयकर में लोगों को क्या क्या सुविधा दिया गया है सर?
जी शरद जी आप बताएं। आप
सर आयकर अधिनियम 2025 में कर टैक्स की जानकारी के लिए नए नियम क्या क्या बनाए गए हैं?
देखिए मोहन जी और पहले बलराम जी भी जो पूछ रहे थे, मैं आपकी इजाजत से उनको बताना चाहूंगा कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट है, जो आयकर का पूरा स्ट्रक्चर है, जिस मेथड से आयकर चार्ज किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसा कि दास साहब ने भी अभी बताया कि जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था वो इतना बार उसमें बदलाव हुए, 4000 से ऊपर उसमें बदलाव हुए, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। उसको सिंप्लीफाई किया गया है, उसको आसान भाषा में बनाया गया है। आप जिस तरीके से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते थे उसमें वो वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। आपको कुछ फॉर्म्स नए देखने को मिलेंगे, कुछ रूल्स उसमें नए हैं, पर बेसिक जो इनकम टैक्स के टैक्स करने का तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ एक्ट को चेंज किया गया। तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा सवाल हमारे साथ दास साहब यही आएगा, वो सब लोग जानना चाहते हैं कि इस नए इनकम टैक्स में हमें क्या छूट मिलेगी। तो जो छूट थी ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम वो उसमें भी थी इसमें भी है, जो टैक्स के रेट्स थे वो उसमें भी थे इसमें भी है। तो ये मुझे लग रहा है सबसे पहले लोगों को समझने की जरूरत है कि कोई नया इनकम टैक्स आपके लिए कोई स्पेशल छूट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेके आ रहा है, जो पहले था वही है, सिर्फ एक्ट का जो स्ट्रक्चर जो उसकी ऐसा समझिए कोई कोई व्यक्ति था उसके कपड़े फटे पुराने हो गए थे, पुराने पहने हुए थे, उसने बहुत साल से कहीं पर टाका लगा हुआ था, कहीं पर सिलाई करी हुई थी, उसको अब नए साफ सुथरे कपड़े पहना दिए गए, तो देखने में अच्छा लगता है, ज्यादा अपीलिंग लगता है।
यही शंकाएं हैं कि सबसे पहले कि क्या लोगों के आम जो जहन में आ रहा है कि कहीं टैक्स लाभ में तो चेंज नहीं हुआ है, या ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम के अलावा भी कोई नई व्यवस्था आ रही है करके, तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है और यही शंकाएं भी हैं।
हाँ, ये जो है इसमें जो नया इनकम टैक्स एक्ट 25 आया है उसमें जो एक्ट हमारा रिपील हो गया है 1961 में कोई चेंज नहीं। तो जो जिस तरीके से आपकी टैक्स आप कंप्यूट करते थे, जितना टैक्स आप देते थे उतना ही रहेगा यहाँ भी। तो यहाँ ओनली एडवांटेज आपको मिल रहा है कि आपको एक नया तरीके से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, आपको समझ इजी हो जा रहा है, आप एक जगह में सारे प्रोविजन को आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप किसी और को पूछने की जरूरत नहीं होगा, किसी की सहायता की इतनी जरूरत नहीं है। ये एक सबसे बड़ी आपकी बदलाव जो नया इनकम टैक्स एक्ट 25 में हुआ है।
जी तो दरभंगा से भी एक और जो प्रश्न था वो भी अभी एक बार दूसरा प्रश्न था वो भी जानेंगे उसका जवाब, लेकिन एक और हरिद्वार से जुड़े हैं हमारे श्रोता रवि जवालिया जी। रवि जी नमस्कार।
नमस्कार मैम जी।
जी
और महोदय सर को भी नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है।
हाँ जी नमस्कार,
आपका प्रश्न क्या है?
हाँ जी सबसे पहले सर मैं आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस जो पहले 7 अप्रैल को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी, सभी श्रोताओं को और आप सभी को जी।
धन्यवाद। अपना सवाल पूछें।
मेरा सवाल ये है कि मैम क्या जो नए नियम लगे हैं इसमें, अब वो उसमें कोई छूट वूट है और क्या आम आदमी भी टैक्स भरता है
जी? और दरभंगा से भी जो उनका यही था कि क्या नए नियम आए हैं और इनका भी ये है कि कुछ छूट है, तो अभी भी शंकाएं हैं लोगों के मन में।
मैंने जैसे कहा दास साहब कि सबसे बड़ा लोगों को यही है, पता नहीं नया एक्ट हमारे लिए कुछ ऐसा लेके आया है। और जैसा कि अभी दास साहब ने भी बताया, वो तो स्वयं सीबीडीटी से हैं और मैं भी उनकी इजाजत से फिर से एक बार दोहरा देता हूं क्योंकि मुझे पता था कि यही सवाल आज सबसे ज्यादा आने वाले। अब मुझे लगता है देखिए, पहला वाला अगर एक्ट आप उठा के देखेंगे 65 साल का था, वो रिटायर हो गया 60 साल में, तो सरकार भी रिटायर कर देती है किसी मुलाजिम को भी, 65 साल इस एक्ट ने सेवा दी है। वो आप जब पढ़ते उस एक्ट को तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, सेक्शन सब सेक्शन प्रोविजंस उसके अंदर इतने ज्यादा उलझ गए थे, इतनी बदलाव हो के इसको अब बिल्कुल सिंपल लीन कर दिया गया। तो मैं सबसे बड़ा बदलाव मैं समझता हूं जो दास साहब भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि आपको किसी टैक्स एडवोकेट के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता था छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए। इस एक्ट में प्रयास किया गया कि आप उसको स्वयं पढ़े, स्वयं पढ़ के समझे, वो आसान है भाषा में। तो ये और ये कह रहे थे कि क्या टैक्स भरना पड़ेगा कोई आपका 12 लाख रुपए तक का, पहले भी पहले पुराने एक्ट में 87 ये उसको बोलते थे रिबेट मिलता था, अभी भी वही मिल रहा है। तो कोई नया आप अगर आप टैक्सेबल नहीं है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है जवालिया साहब। मुझे लगता है कि पहले टैक्स नहीं थे तो अभी भी टैक्सेबल नहीं रहेंगे दास साहब, बताइए।
हाँ जवालिया जी, आपकी क्वेश्चन के यही आंसर हम फिर से देना चाहते हैं कि देखिए, आप पहले जो पुरानी एक्ट हमारा 61 की एक्ट था उसमें भी जो भी टैक्स आपको देना था, अभी 25 में भी वही आपको टैक्स लायबिलिटी उतना ही है आपको देना है। आप पहले 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बेसिक एग्जेम्पशन, उसके बाद आपकी 4 से 8 लाख के बीच में 5%, 8 से 12 लाख के बीच में आपको 10%, इस हिसाब से आपकी स्लैब से, तो वो भी कंटिन्यू अभी भी जो न्यू इनकम टैक्स 25 है वो भी होगा। इसलिए आपका एक भ्रम जो है ये आप दूर कर लीजिए कि यहाँ कोई इनकम टैक्स 25 में हम लोग ना तो नया कोई टैक्स लेके आए, नया कोई छूट दिए हैं, ये जो था पहले वही अभी भी 25 की एक्ट में है, बट आपकी जो पढ़ने की तरीका ये सब चीजें बड़ा सिंपल हम लोग कर दिए।
टैक्स लाभ में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि एक जमाना होता था जब प्रगति मैदान में मेला लगता था टैक्स भरने के लिए, तो टेक्नोलॉजी आई, धीरे धीरे चीजें बदलती गई।
वो प्रियंका अभी भी लगता है,
पर अब क्योंकि आप लोग डिजिटली करने लग गए हैं तो अब हम जो आम लोग हैं वो इजिली भर सकते हैं, और ये जो नया अब आएगा फॉर्म उससे और भी इजी हो जाएगा लोगों के लिए। गुरुग्राम से जुड़े हैं सुभाष जी।
हेलो
जी, नमस्कार
जी,
सुभाष जी,
मैं सादर प्रणाम आपको।
प्रणाम जी
जी, और एक्सपर्ट सर को सादर प्रणाम।
प्रणाम
जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये 2025 का इनकम टैक्स लागू हुआ है या जो भी हो सर, उसका व्यक्ति का आय का गणना कैसे की जाती है, उस दायरे में कौन सा व्यक्ति आता है, कृपया ये बताइएगा। और वो जो जीएसटी का सिस्टम है, जीएसटी भी एक तरह का टैक्स ही है, उससे तुलना करा जाए तो उस टैक्स में और इनकम टैक्स में क्या मतलब कुछ अंतर है या किस तरह से दायरे में आता है, प्लीज समझाने की कृपा करें, धन्यवाद।
चलिए, तो दास साहब खुद टैक्स पॉलिसी से हैं, उनके सामने मैं इस बात का जवाब देता हूं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है सुभाष जी, वो आप जब सामान खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके अलग अलग रेट्स होते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो सीधा उसी व्यक्ति से, उसको डायरेक्ट इंसिडेंस कहते हैं, जिससे इंटेंडेड होता है उसी से लिया जाता है। जीएसटी तो आप देखते होंगे कलेक्ट कोई और करता है, फिर उसको आगे जाके जमा कोई और करता है, कहीं से कलेक्ट होके कहीं जमा होता है, पर इनकम टैक्स एक्ट सीधा उस व्यक्ति से लिया जाता है जिसके ऊपर उस पर लगाने की मंत्रणा होती है। और 5 सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, या आप सैलरी से कमाते हैं, या बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, कैपिटल गेन से कमाते हैं, या एक रेसिडुअल सोर्स होता है जिसको हम अदर सोर्सेस कहते हैं। तो इन 5 में से जहां से भी आपकी इनकम आती है, मान लीजिए किराए की आती है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, आप कहीं नौकरी पेशा करते हैं तो सैलरी से आएगी, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से आएगी। तो इस तरीके से ये टैक्स लगता है। आपने तो पूरा टैक्स का मुझे लगता है बेसिक क्लास ही पूछ लिया है, तो बहुत लंबा जवाब होगा। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप कुछ स्पेसिफिक इसमें पूछना चाहें तो।
जी, ऐसे आय की गणना उन्होंने बोली है, जैसे आपने बताया था दास जी की, बहुत ही ऑटो जनरेटेड कहिए, ऑटो फिल हो जाती हैं चीजें, और एग्जांपल के तौर पर भी दिया गया था कि जैसे अगर टीडीएस है तो ऐसे लगेगा, इतना लगेगा, तो लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना ही।
हाँ, ये जो हमने इनकम टैक्स 25 की जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस की है, उसमें एक और एक चीज है जो कि सबको बताना चाहता हूँ कि पहले जैसे कोई कॉम्पिटिशन मैकेनिज्म है एक्ट में, वो टेक्स्ट के हिसाब से आता था। उसको हम लोगों को समझने के लिए हमने उसको फॉर्मूला की तो ये से उसको डिपिक्ट किया है। तो आप फॉर्मूला होगा तो आप इजीली उसको कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे चीजें हम टेबल की आधार पर उसको दिखाए दिए हैं, तो आपको इजी होगा कि टैक्स रेट कितनी ही, कौन सी इनकम नेचर है, उसके हिसाब से कितनी आपको टीडीएस काटना है। जैसे टीडीएस की पूरा टीसीएस की पूरी नया टेबल हम लोग लेके आए हैं। इस तरीके से आप अभी जो है नया इनकम टैक्स एक्ट में आपको टैक्स कितनी देना है और कैसे उसको कैलकुलेट करना है ये भी इजी हो जाएगी।
जी, एक और श्रोता हमारे जुड़े हैं शिमला से, राकेश जी।
जी हेलो, नमस्कार।
नमस्कार
जी, मेरा ये सवाल है जो नया इनकम टैक्स जो कानून बना है
जी,
जो विदेश में हमारे जो भारतीय नागरिक रहते हैं तो उनके लिए इसमें क्या प्रावधान है?
जी,
विदेश में जो रहते हैं उनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं राकेश, और अगर उनकी भारत में कोई कमाई होती है तो भारत की कमाई का टैक्स उनको भारत में देना पड़ता है, जैसा पहले एक्ट में था। अगर वो पहले एक्ट के अंतर्गत भारत में कोई टैक्स देते थे तो उनको भारत में देना पड़ेगा। अगर वो दोनों जगह कमाते हैं, भारत में भी कमाते हैं वहां भी कमाते हैं, पर कुछ दिन वो भारत में बिताते हैं जिसके पूरे नियम है 120 दिन या 180 दिन, तो फिर उसमें डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट अलग अलग देशों के साथ साइन किया हुआ है। तो जो मूल बात यह है राकेश कि जो पहले आयकर अधिनियम थे किसी विदेश में रहते हुए भारतीय के लिए, वही अधिनियम अभी भी लागू हो रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो आप थोड़ा स्पेसिफिक अगर पूछना चाहें, कोई टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम वैसे पूछ रहे हैं, मुझे लगता है दास साहब ज्यादातर सवाल आ रहे हैं लोगों के बजाय नए इनकम टैक्स के, वो टैक्स की प्रणाली के बारे में मुझे लगता है कॉम्पिटिशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल गया होगा।
महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो गुरुनाथ जी।
जी मैम नमस्ते।
नमस्ते
मैम, मेरा क्वेश्चन है अभी जो मतलब ये जो इनकम टैक्स रिटर्न जो एक्ट बनाया है उसका जो ड्राफ्ट बनाया है, मतलब पहले कितने उसमें मतलब आर्टिकल्स थे और अभी कितने आर्टिकल्स है, और इसमें मतलब जो टैक्स पेयर्स है उनको मतलब समझने में कितनी सुविधा रहेगी?
वही क्वेश्चन आ रहे हैं,
वही बार बार आ रहा है, लेकिन फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो अभी समाप्त हो गया है उसमें हमारा 819 सेक्शन था, धारा था। अभी जो नया एक्ट बना है उसमें 536 धारा हो गया है। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट 61 में हम लोग एक सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन रहता था, प्रोविजो रहता था, वो सब हटा दिए, वो कॉम्प्लेक्स करता था पढ़ने के लिए, समझने के लिए इजी नहीं होता था, तो उसको हम लोग भी कम कर दिए हैं और हटा दिए हैं पूरा। जो सेक्शंस हमारा जरूरत नहीं है, जो सनसेट हो चुका है, वो भी इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा ही था, तो उसको भी हम लोग जो रिडंडेंट सेक्शन है उसको भी हम लोग हटा दिए हैं। आपकी जो जैसे मैंने बताया था कि आपकी कंप्यूटेशन प्रणाली जो था वो भी टेक्स्ट के हिसाब से था, पढ़ने में समझने में दिक्कत होता था, उसको हम लोग फिर फॉर्मूला या टेबल के आकार में उसको दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हुआ है जो कि इनकम टैक्स 25 में आपको
जी
को मिलेगा।
व्हाट्सएप पे हमारा एक सवाल आया है डॉक्टर किरण दामबलकर जी का, नई दिल्ली से। उनका सवाल है कि माय आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26 कुड नॉट बी सेंड दो आई पेड ऑल ड्यूज बाय एडिशनल आईटी चलान बाय एसबीआई, द वेबसाइट इज नॉट टेकिंग एनी ऑप्शन ऑफ लेट रिटर्न नाउ, व्हाट टू डू?
तो आई थिंक शी मस्ट हैव रन आउट ऑफ यू नो टाइम बार हो गया होगा वो, अगर इन्होंने कितना कौन से पीरियड का है
असेसमेंट ईयर 25-26
का, असेसमेंट है 25-26, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, उसका अब समय निकल चुका है। तो मुझे लग रहा है वो अब तो बिलेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल कर सकते, उसका भी शायद समय निकल चुका है। तो अगर आप नहीं कर सकते तो इसमें मेरे ख्याल एक प्रावधान होता है कि आप 119 में कमिश्नर से परमिशन लेके उसको फाइल कर सकते हैं, तो ये प्रावधान होता है। हालांकि ये सवाल नए आयकर अधिनियम के अंतर्गत इससे कोई मतलब नहीं है, ये एक जनरल प्रोसेस का वो क्वेश्चन पूछ रही है। पर ITRU इसमें आप फाइल कर सकते हैं, जो ITR अपडेटेड होता है, कि अगर आपसे आपको लग रहा है कि कुछ इनकम दिखानी रह गई है और आपकी एडिशनल इनकम बनती थी वो आपसे मिस हो गई है, तो वो आपको फिर थोड़ा सा फालतू टैक्स देके आप ITRU फाइल कर सकते हैं, या आप फिर परमिशन लेके अगर टाइम बार हो गया दास साहब तो आई थिंक शी कैन टेक परमिशन फ्रॉम CIT एंड फाइल, जो कई बार वो भी परमिशन मिल जाता है अगर वो टाइम निकल चुका है तो।
एकदम
जी उम्मीद करते हैं डॉक्टर किरण आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब जयपुर से जुड़े हैं प्रमोद जी हमारे साथ, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दासी मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि जैसे रिफंड, अब ये जो नया असेसमेंट ईयर और पहले फाइनेंशियल ईयर होता था, और अक्सर जब मैं रिफंड का स्टेटस चेक करती थी दोनों आते थे, कंफ्यूजन रहता था, असेसमेंट ईयर देखना है फाइनेंशियल ईयर देखना है, तो वो भ्रम की स्थिति रहती थी, तो इसमें कुछ चेंज आया है?
हाँ, ये सबसे बड़ा चेंज है कि पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हम लोग का दो कंसेप्ट था, एक था प्रीवियस ईयर जो कि लगभग फाइनेंशियल ईयर है, और दूसरा है कि असेसमेंट ईयर। ये जो नया हमारा अधिनियम आया है इनकम टैक्स एक्ट 25 में, वी हैव रिप्लेस दिस टू कॉन्सेप्ट विथ टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर मतलब ये हो गया कि 12 इयर्स पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April टू 31st of March, जिसमें आपकी इनकम अर्न हुआ एंड टैक्सेस ऑल्सो पेड हुआ, टैक्सेस ऑल्सो कंप्यूट हुआ। तो बेसिकली ये जो दोनों कॉन्सेप्ट था अभी मर्ज हो गया है एक सिंगल ईयर कॉन्सेप्ट में, दैट इज कॉल्ड टैक्स ईयर। सो अभी जो 1/4/26 के बाद आप जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे या टैक्स कंप्यूट करेंगे, ये टैक्स ईयर के हिसाब से कंप्यूट करना है। वो टैक्स ईयर मैं आपको बता दिया कि वो 12 महीने की पीरियड है जो कि स्टार्ट होता है 1st of April से एंड होता है 31st of March।
जिनका रिफंड पहले से पेंडिंग है और अब जैसे एक ही टैक्स ईयर हो जाएगा, तो उनको कोई परेशानी, घबराने की जरूरत तो नहीं?
कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक धारा वहाँ इनकम टैक्स एक्ट 25 में रखे हुए हैं, वो धारा नंबर है 536 जो है बहुत सारे वो रिपील करता है पुरानी एक्ट को, सेव भी करता है बहुत सारे टैक्स बेनिफिट राइट्स एंड लायबिलिटीज को, वो आगे लेके चलता है
जी।
तो आपकी सपोज रिफंड 2024-25 की अराइज हो चुका है, वो एक्ट अभी रहा नहीं है, एक्ट 1961 समाप्त हो गया है, फिर भी वो जो आपको रिफंड की एंटाइटलमेंट है वो नया एक्ट के तहत भी वो आपको मिलेगा। वो जो 536 सेक्शन है वो है आपका ब्रिज बिटवीन द ओल्ड एक्ट एंड द न्यू एक्ट
जी। नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हैं त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ।
जी नमस्कार।
नमस्कार
जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अभिनव बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि पहले देखिए टैक्स जो हम सबके लिए और रिटर्न करने का जो समय था वो था 31 मार्च, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दिया गया है, तो जो जो जिन्होंने अपना 31 मार्च को इस साल भर दिया है वो 25 के लिए, तो अब 26 के लिए मतलब कि वो 8 महीने बाद फिर वो इस साल के लिए भरना पड़ेगा, या फिर अब अगले साल 27 में जाके वो 31 दिसंबर को भर सकते हैं?
अविनाश, पहली बात तो समय 31 मार्च तो ऑडिट का कभी भी नहीं था। देखिये 31 मार्च को तो आपका साल क्लोज होता है, अगर आप छोटा बिजनेस करते हैं और ऑडिट कराते हैं, उसको सेक्शन 44A(b) पहले कार करते थे जिसके अंतर्गत ऑडिट होता था, तो वो तो आपको पहले ही उसके लिए अक्टूबर तक का टाइम मिलता था। और अभी भी आप अगर 31 मार्च 2025 की बात कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2025 का तो अक्टूबर हो गया, और अगर आप जो साल बंद हुआ है यानी कि 26 में जो बंद है उसका फिर अक्टूबर तक आपको समय मिलेगा। मुझे लगता है आप कुछ ऑडिट से कंफ्यूज कर गए हैं, क्योंकि उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ उसके फॉर्म्स बदल गए हैं, उसका सेक्शन बदल गया है, पर जिस तरीके से जिस प्रकार से आप ऑडिट करते थे, जो आपकी टर्नओवर जब एक सीमा के बाहर जाती है तो ऑडिट करना जरूरी होता है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फिर तो ऑडिट कराना ही होता है, तो उसमें मुझे लग रहा है आप साल कहीं मिक्स कर गए, क्योंकि 31 मार्च 2026 का अभी भी अक्टूबर तक ऑडिट होगा, अनलेस की कोई लास्ट मोमेंट पे किसी कारण से डेट बदली जाती है तो वो अलग बात है, पर फिलहाल वही डेट्स में भी अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं है
जी।
खाली एक बदलाव मैं बताता हूं, ये फाइनेंस एक्ट 26 में हम लोग एक और एक नया चीज थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया, एक डेट वो है आपका रिवाइज रिटर्न की टाइम। वो पहले हम लोग का था कि 31 दिसंबर तक, सपोज कोई भी फाइनेंशियल ईयर से 25-26 की फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31/3/26, उसके लिए आपने रिवाइज रिटर्न फाइल करना है आपको दिसंबर तक, लेकिन उसको और 3 महीना हम लोग ये नया फाइनेंस एक्ट 26 में बढ़ाए हैं, सो दैट वो साल की रिटर्न जो है रिवाइज आप कर सकते हैं 31 मार्च 2027 तक।
हाँ, पर वो तो सभी के लिए,
सभी के लिए।
हमने हमसे एक बार फिर जुड़ गए हैं जयपुर से प्रमोद जी।
नमस्कार
नमस्कार प्रमोद जी।
हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे ये तो समझ में आ गया कि जो टैक्स बढ़ना है वो तो बढ़ना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मा में जिस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया है तो उसको आप डिटेल में बता सकते हैं? उदाहरण सही, जैसे पहले परफॉर्मा में इतने कॉलम थे, अब इतने कॉलम हो गए, बस ये बढ़ना है ये चीजें, उससे आपका टैक्स वाला फटाफट हो जाएगा।
हाँ, ये जो है, ये इनकम टैक्स एक्ट 25 के आने के बाद हम लोग इनकम टैक्स रूल 1962 को जो है वो भी रिपील किया है, नया इनकम टैक्स रूल 2026 आया, उसमें नया रूल बना वो एक्ट, जो नया एक्ट के तहत, और उसमें बहुत सारे फॉर्म भी जो है हम लोग नया तरीके से, उसको स्मार्ट फॉर्म जो बोल रहे हैं हम लोग किया। उसमें क्या है कि आपकी अभी पूरे फॉर्म जो है, पहले थोड़ा सा डिटेल नहीं था, अभी पूरी डिटेल हो गया है, और उसमें हम लोग क्लियरली उसको दो तीन भाग से उसको फॉर्म को सेग्रीगेट किए हैं। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक पार्ट में रहेगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दूसरी पार्ट में रहेगा, सो दैट वो क्लैरिटी रहे। दूसरा, फॉर्म ऑटो फिल हो जाएगी, बहुत सारे कॉलम आपकी, सपोज जैसे नाम है, आपकी एड्रेस है, ये सब ऑटो फिल हो जाएगी, तो उसमें क्या है कि आपकी जो टाइम लगता था फॉर्म भरने के लिए वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जो नया अभी जो आप फॉर्म भरेंगे, ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि फॉर्म बड़ा स्मार्ट है, एंड जो है सारे जो डेटा जो है वो ऑटोफिल भी हो जा रहा है बहुत सारे कॉलम में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और फॉर्म के नीचे फुटनोट हम लोग दिए हैं बहुत डिटेल, वो फुटनोट पढ़ के भी आपको कहीं कोई कॉलम आपको भरने में दिक्कत हो रहा है, आप उससे भी कुछ ले सकते हैं कि कैसे भरना है, क्या करना है, वो भी एक गाइडेंस के हिसाब से फॉर्म के नीचे ही है।
दासी से फॉर्म्स भी बदल गए हैं, जैसे फॉर्म्स के नाम पहले कुछ थे, अब इस जो कानून में वो भी बदल गए हैं कुछ।
नहीं, फॉर्म की खाली नंबर चेंज हुआ है,
चेंज हुए हैं जी।
बहुत सारे फॉर्म भी, जैसे पुरानी 300 करीब फॉर्म था, अभी 180 प्लस फॉर्म हो गया है। फॉर्म में बहुत सारे, जैसे बहुत सारे फॉर्म, चार पांच फॉर्म था उसको कंसोलिडेट एक फॉर्म बना दिया गया है, बहुत सारे फॉर्म की जरूरत नहीं था उसको हम लोग निकाल दिए गए हैं, फॉर्म को भी बड़ा डिटेल कर दिए हैं, सो दैट पहले थोड़ा दिक्कत होता था कि क्या भरा जाए, उसको भरने के लिए गाइडेंस जैसे हो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म के नीचे दे दिए हैं। तो ये सारे चीजें जो है टैक्सपेयर के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और आसान होगा।
पुणे से जुड़ गए हमारे साथ श्रीपद जी।
हेलो।
हाँ जी श्रीपद जी, अपना सवाल जल्दी पूछें।
नमस्कार सर।
नमस्कार।
मेरा सवाल ये है कि जैसे दो दृष्टि बाधित है और हमारा खाली बैंक बैलेंस पर ही चलता है, कोई हमारा इनकम वगैरह नहीं है, तो फिर भी हमारा सालाना टैक्स कटता है, मतलब साल में, तो अभी ये जो नया आपका जो आया है अधिनियम, इसमें कोई छूट वगैरह नहीं हो सकती क्या हमको?
शरद जी आप,
अच्छा इनका मुझे लगता है ये दृष्टि बाधित है तो इनका टीडीएस कटता है, खाली बैंक इंटरेस्ट इनकम है, तो उसमें तो श्रीपाद जी पहले अगर 12 लाख रुपए से कम की आपकी आय है तो वो तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करके और आप उसको रिफंड ले सकते हैं, तो आपका जो टीडीएस कटा है वो आपको रिफंड हो जाएगा। और आजकल तो रिफंड की प्रक्रिया इतनी क्विक है, इतनी फास्ट है, इतनी जल्दी आ जाता है, आप फाइल करेंगे और उसको वापस लीजिए, वो आपको उसको आपको रिटर्न फाइल करके ही वापस लेना पड़ेगा। ये भी चेक कर लीजिए कि आप बैंक को फॉर्म जमा करके अगर टीडीएस ना कटे, उनको बता दीजिए कि मैं टैक्सेबल नहीं हूं। कई दफे बैंक इसको काटते नहीं, पहले उसको 15GH बोलते थे, अभी हमें फॉर्म्स याद करने में समय लग रहा है, नया एक्ट है, तो वो आप जमा करके उसको हो सकता है आपका कटे नहीं, पर कट भी गया है तो कोई बिल्कुल चिंता की बात नहीं, आप रिटर्न फाइल करके उसको वापस रिफंड ले सकते हैं।
तो वरिष्ठ लोगों के लिए भी कुछ, खासकर 75 वर्ष से अधिक लोग हैं उनके लिए भी कुछ विशेष सुविधाएं की गई हैं?
हाँ, ये जो फाइनेंस एक्ट 2026 में हम लोग एक नया रूल लेके आए हैं, उसमें वरिष्ठ लोग जो है, आप जैसे आपको सपोज डिविडेंड इनकम मिल रहा है, आप हर सपोज आप 5 कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं शेयर्स में, तो आप 5 कंपनी में जाके अपना 15GH आप देते थे टू गेट बैक, आई मीन बट आप जो है अभी आप एक हम लोग एक क्रिएट किए हैं एक ही जगह में NSDL जो है हमारा, वो एक ही जगह में आप फॉर्म दो एंड वो फॉर्म ऑटोमेटिकली सारे कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
जी जी, धन्यवाद दास जी, धन्यवाद खोली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने श्रोताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने प्रश्न पूछे। समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए तो प्रियंका अरोड़ा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।